श्रीनंद उवाच। श्रीनंद महाराज ने कहा, पर्जन्या बरसात, भगवान महान स्वामी इंद्र, इंद्र मेघ बादल, तस्य उनके आत्ममूर्तया व्यक्तिगत प्रतिनिधि ते वे अभिवर्षन्ति बरसात देते हैं, भूतानाम सारे जीवात्माओं के लिए, प्रीणनम तृप्ति के लिए, जीवनम जीव देने वाली शक्ति, पया दूध की तरह। अनुवाद, नंद महाराज ने उत्तर दिया, महान ईश्वर इंद्र वर्षा के नियंत्रक हैं, ये बादल उन्हीं के साक्षात प्रतिनिधि हैं और वे ही वर्षा करते हैं जिससे समस्त प्राणियों को सुख और जीवन दान मिलता है। तात्पर्य, शुद्ध वर्षा जल के बिना पृथ्वी न तो किसी को आहार न ही पेय प्रदान कर सकती थी और न ही कहीं स्वच्छता रह सकती, अतः वर्षा की महत्ता का अनुमान लगा पाना कठिन है। आज हम 3-4 श्लोक पढ़ेंगे। इसके पहले का प्रसंग चल रहा था, भगवान कृष्ण नंद बाबा से पूछ रहे थे कि क्यों ये पूजा की जा रही है, किसके लिए की जा रही है। तो इसके पहले के श्लोक में कृष्ण नंद बाबा से पूछ रहे हैं कि आप मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि इस अनुष्ठान के विषय उद्योग को बतलाइए, क्या कारण है, ये उत्सव क्यों मनाया जा रहा है, क्या ये शास्त्र सम्मत है या केवल समाज की एक साधारण रीति है। और आज के श्लोक में नंद महाराज जी जवाब दे रहे हैं कि महान ईश्वर इंद्र वर्षा के नियंत्रक हैं, ये बादल उन्हीं के साक्षात प्रतिनिधि हैं और वे ही वर्षा करते हैं जिससे समस्त प्राणियों को सुख और जीवन दान प्राप्त होता है। तात्पर्य, शुद्ध वर्षा जल के बिना पृथ्वी न तो किसी को आहार न ही पेय प्रदान कर सकती है और न ही कहीं स्वच्छता रह सकती है, अतः वर्षा की महत्ता का अनुमान लगाना कठिन है। आगे के और 2 श्लोक पढ़ने हैं। नंद महाराज कृष्ण के प्रश्नों का जवाब में कह रहे हैं कि हे पुत्र, ततम तात वयम मन्ने च वा वार्मुचाम प्रतिमीश्वरम द्रव्य सद्रे तथा सिद्धे जन्ते क्रतुर भी नरा। अनुवाद, हे पुत्र, केवल हम ही नहीं अपितु अन्य लोग भी वर्षा करने वाले इन बादलों के स्वामी की पूजा करते हैं, हम उन्हें अन्न और अन्य पूजा की सामग्री भेंट करते हैं जो वर्षा रूपी उन्हीं के वीर्य से उत्पन्न होती है। तात्पर्य, नंद महाराज बड़े धैर्य से अपने नन्हे पुत्र श्री कृष्ण को जीवन के यथार्थ समझ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु नंद तथा वृंदावन के सारे वासियों को एक आश्चर्यजनक शिक्षा प्राप्त हुई, जैसे कि इस अध्याय में बतलाया गया है। वे आगे कह रहे हैं, तच्छे शेनोपजीवन्ति त्रिवर्ग फल हेतवे पुंसाम पुरुषकारणम पर्जन्य फल भावना। इंद्र के लिए समस्त यज्ञों से बचे जूठन को ग्रहण करके लोग अपना जीवन पालन करते हैं और धर्म अर्थ और काम रूपी तीनों लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार भगवान इंद्र उद्यमी पुरुषों की सकाम सफलता के लिए उत्तरदायी अभिकर्ता हैं। तात्पर्य, कोई ये आक्षेप कर सकता है कि लोग कृषि करते हैं, उद्योग इत्यादि के द्वारा अपना पालन करते हैं, किंतु जैसे कि पहले उल्लेख हो चुका है कि सारे मानवीय तथा अमानवीय प्रयास भोजन और पेय पर आश्रित होते हैं, जिन्हें पर्याप्त वर्षा के बिना उत्पन्न नहीं किया जा सकता। त्रिवर्ग शब्द के द्वारा नंद ने यह भी बताया कि इंद्र यज्ञ के द्वारा प्राप्त होने वाली संपन्नता केवल इंद्र तृप्ति के लिए नहीं अपितु धर्म तथा आर्थिक विकास के लिए भी होती है। जब तक लोगों को भली भांति भोजन नहीं मिल जाता, वे अपने कार्यों को ठीक से नहीं कर पाते और अपना कार्य के बिना धार्मिक बन पाना अतीव कठिन है। 11 भी पढ़ना है, 11 तक तुम 10 कर, ये लास्ट श्लोक है नंद बाबा जो बोल रहे हैं। ये धर्म य एनम विश्व जे धर्म परम अपरागतम नर काम कामा द्वेषात भयात लोभात स वै न आपनोति शुभनम। यह धर्म स्वस्थ परंपरा पर आश्रित है। जो कोई काम के कारण या शत्रुता के कारण, डर के कारण या लोभ के कारण इसका बहिष्कार करता है, उसे निश्चय ही सौभाग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तात्पर्य, यदि कोई व्यक्ति काम ईर्ष्या भय या लोभ के कारण अपने धार्मिक कर्तव्यों की अपेक्षा करता है तो उसका जीवन कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। ओम ज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमा ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे पंच कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे रजो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि कई महीनों के बाद मुझे श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम और उनके पार्षदों का दर्शन हो रहा है। जहाँ पर भक्त प्रेम से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं वहीं पर वृंदावन प्रकट होता है। मैं पिछले दो सप्ताह से वृंदावन में और गोवर्धन में था बलराम जयंती के लिए, तो वृंदावन में रहने से ऐसी इच्छा नहीं होती कि वृंदावन छोड़ें। तो कल ही मैं वृंदावन से आया परसों, हमें दुख लग रहा था, लेकिन आज सवेरे जब राधा राधिका रमन के दर्शन किए तो ऐसा लगा कि मैं वृंदावन में हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल डीटीज हैं, सबसे ज्यादा सुंदर। ऑफकोर्स वृंदावन में सोचा था राधा श्याम सुंदर सबसे ज्यादा सुंदर है, और इस सब कैलाश में बोलूंगा कि राधा पार्थसारथी सबसे ज्यादा सुंदर है, क्योंकि भगवान जहां भी प्रकट होते हैं वो सबसे सुंदर होते हैं। ये भगवान की विशेषता है। जैसे भगवान रास लीला कर रहे थे तो हर एक गोपी को लग रहा था कि कृष्ण सिर्फ मेरे साथ ही लीला कर रहे। चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में भाग ले रहे थे तो हर एक भक्त को लग रहा था कि चैतन्य महाप्रभु मेरे ही ग्रुप में है। ऐसे भगवान जहां भी प्रकट होते हैं अपनी सुंदरता से, अपनी कृपा से, अपने प्रेम से सारे भक्तों को आकर्षित कर ले, इसीलिए उनको कृष्ण कहते हैं। भगवान के अनंत नामों में से सर्वश्रेष्ठ नाम कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक। और जैसे भक्त भक्ति में शुद्ध बनते हैं तो भगवान के गुणों को, उनका भगवान की कृपा से वो भी दूसरों के मन को कृष्ण की तरफ आकर्षित करते हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ श्री कृष्ण प्रभु को और यहाँ के सभी भक्तों को मुझे सेवा का अवसर देने के लिए। आज का विषय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो लीला है गोवर्धन लीला, यहाँ पर इंद्र का मान भंग हुआ, ये हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है समझना। आध्यात्मिक जीवन का मार्ग जो है वो बहुत सरल भी है और जटिल भी है, ये कॉन्ट्राडिक्शन लगता है, विरोधाभास, वेरी इजी एंड वेरी डिफिकल्ट साइमल्टेनियस। ये कैसे हो सकता है? इसको बोलते हैं अचिंत्य। इसको हमें एक शब्द है अचिंत्य, ये बहुत हेल्पफुल है। भगवान सबसे छोटे भी हैं सबसे बड़े भी हैं, ये कैसे हो सकता है? अचिंत्य। भगवान सबसे पास भी हैं सबसे दूर भी हैं, ये कैसे है? अचिंत्य। भक्ति का मार्ग कितना सरल है, बस हरे कृष्णा मंत्र का जप करना है और वैष्णव की सेवा करनी है और परम सफलता कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। क्या ये मुश्किल है? 16 माला जप करना, यू नो, आईआईटी कोचिंग क्लासेस है तो बहुत इजी है कंपैरेटिवली। जनरली विद्यार्थी आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए क्या कहते हैं उसको, जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक साल दो साल मेहनत करते हैं और बहुत पैसा खर्च करते हैं, फिर परीक्षा होती है, उसमें भी लाखों मूर्ख नहीं, मतलब विद्यार्थी मूर्ख जो बातें नहीं, वो अपीयर होते हैं, उसमें से कुछ को सिलेक्ट किया जाता है और इतनी जटिल पढ़ाई होती है। मैंने भी ये सब गलतियां की थी। अगर कृष्ण भावना में उपयोग नहीं होता तो ये सब पढ़ाई बेकार है। अगर हमारा इंजीनियरिंग मेडिकल ज्ञान है और अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगता तो वो श्रम है ही वहीं के लिए। उसकी तुलना में आप देखो तो नाम जप करना, भागवत पढ़ना बहुत सरल है। फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े बड़े महारथियों का भी पतन हो जाता है? एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी भक्त ने पूछा कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये जो इतने सीनियर भक्त हैं ये कैसे भक्तों के समाज को छोड़ करके, भगवान की सेवा को छोड़ करके माया में चले गए, ये कैसे हुआ? ये तो आपको बहुत प्रिय थे। श्रील प्रभुपाद ने जवाब दिया, डू नॉट बी सरप्राइज एट हु लीव बट बी सरप्राइज एट हु स्टेज। इस पर आश्चर्य मत करो कि कौन व्यक्ति कृष्ण भावना को छोड़ देते हैं, कौन टिका रहता है अंत तक, वो बहुत दुर्लभ है। ऐसा क्यों है कि आध्यात्मिक जीवन के पावन मार्ग पर जीवात्मा का पतन हो जाता है? ये बात अगर हमें पता होगी तो हम बहुत सावधानी से आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो मैं हाईवे पर जा रहा हूँ, यहाँ से दिल्ली में तो कितने सारे फ्लाईओवर्स हैं और यहाँ से अगर आपको मथुरा की तरफ जाना है तो आप मथुरा रोड से या हरिद्वार रोड से उत्तर की तरफ कई जगह जाने के रास्ते हैं। अगर मुझे कोई व्यक्ति बताता है कि आप इस हाईवे पे जा सकते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन सावधान रहना, यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा है जो दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन आप सावधान से जाना, नहीं तो आप नीत साई गौर हरि बोल आप गिर जाएं। तो क्या ये बताना अच्छा है या कहना चाहिए कि नहीं नहीं आप जाइए, कुछ नहीं है, बस हरे कृष्ण। हमारा मित्र वो है व्यक्ति जो हमें बताता है कि हमारे मार्ग पर और क्या अड़चने हैं। इसीलिए गुरु और वैष्णवों के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, हमें बताने के लिए कि भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या चीजों से सावधान रहना है। और ये इतिहास में या देखोगे ये प्रसंग बार बार आता है। इंग्लिश में कहते हैं प्राइड गोएथ बिफोर अ फॉल, अभिमान जो है वो पतन से पहले अभिमान दिखाई पड़ता है। अरे अभिमान जो है गर्व, ये हर जीवात्मा में है, फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। हर एक को कोई ना कोई चीज का गर्व होता है, कोई किसी व्यक्ति को गर्व होता है मैं बहुत अच्छा प्रवचन करता हूं, कईयों का मैं उद्धार कर रहा हूं, मैं पतित पावन हूं, मतलब स्वयं पतित हो जाता है। किसी को बहुत गर्व होता है मैं इतना सुंदर गाता हूं, गंधर्व भी लज्जित हो जाते हैं मेरी आवाज सुन के। किसी को गर्व होता है कि मैं बहुत सुंदर फंड कलेक्शन कर रहा हूं, किसी को बहुत गर्व होता है कि मैं मंदिर का मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर रहा हूं, किसी को गर्व होता है कि मैं भगवान के लिए बहुत अच्छा भोग बना रहा हूं या बना रही हूं, और किसी के पास कुछ नहीं होता तो वो भी गर्व हो जाता है। कोई व्यक्ति गर्व होता है कि मेरे पास कोई गुण नहीं है, मैं सबसे बड़ा नम्र व्यक्ति हूं, ये भी एक गर्व है। इवन भिखारी को भी गर्व होता है, भिखारियों में भी कैटेगरीज होते हैं, अमीर भिखारी, गरीब भिखारी। आपने देखा होगा यहाँ पर वृंदावन में भी भिखारी लाइन में बैठे थे, कॉम्पिटिशन होता है। तो अहंकार का मूल क्या है, ये संकर्षण से आता है अहंकार, और भगवान शिव जी जो हैं अहंकार के अधिष्ठ देव हैं। संकर्षण ओरिजिनली वही संकर्षण सदाशिव के रूप में आता है। अहंकार का मूल कारण है कृष्ण की महानता को भूल जाना, कृष्ण की विस्मृति ही अहंकार का कारण है। अगर हमें कृष्ण स्मरण होंगे तो अहंकार होगा ही नहीं। हम ब्रह्मा विमोहन लीला में देखते हैं कि ब्रह्मा जी भी माया के प्रभाव से सोचने लगते हैं कि ये बालक कौन है, ये छोटा सा बालक कौन है, और वो कृष्ण की परीक्षा लेना चाहते हैं। आप सब वृंदावन में वो जगह पे गए हैं अजय के पास, यहाँ पर ब्रह्मा विमोहन लीला हुई थी, ब्रह्मा जी विमोहित हो गए थे, वो देख रहे थे ये कृष्ण है, ये तो साधारण बालक लग रहा है मुझे। अभी अभी कृष्ण ने अगासुर का वध किया था, और अगासुर का वध करने के बाद भगवान कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे यमुना जी के तट पे, और बहुत सुंदर मिलकर भोजन कर रहे थे। और ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान अपने भक्तों का जूठा खा रहे हैं। जनरली भगवान का एक नाम है यज्ञ भूख, मतलब यज्ञ में ही ऑफरिंग स्वीकार करते हैं, भगवान के भोग के कई सारे नियम विधान होते हैं, लेकिन वही भगवान अपने भक्तों के प्लेट से जूठा खा रहे हैं, तो उनके मन में शंका हुई और इसलिए उन्होंने सब बछड़ों को चुरा लिया। और जब भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि मेरे बछड़े गायब हैं, उनके मित्रों को चिंता थी, तो भगवान अपने मित्रों से कहते हैं कि आप यहीं पर रहिए, मैं जाकर खोज कर आता हूं। तो भगवान भी दिखाते हैं कि मैं अपने भक्तों की सेवा में अधीन रहता हूं, मैं भी भक्तों का सेवक हूं। अभी सुबह में चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा था, कल रात सॉरी, चैतन्य चरितामृत बताया गया कि भगवान का सेवक बनना इतना ऊंचा पद है कि सभी भगवान के सेवक बनना चाहते। गौर लीला में नित्यानंद प्रभु हैं जो बलराम जी हैं, वो भी अपने आप को कहते हैं मैं चैतन्य महाप्रभु का सेवक हूं। अद्वैताचार्य जो सदाशिव के अवतार हैं, वो भी कहते हैं कि भगवान मुझे डांटे, मैं भगवान का सेवक बनना चाहता हूं, और भगवान उनको नहीं डांट रहे, आदर सम्मान कर रहे, इसलिए अद्वैताचार्य जानबूझकर गलती करते इसे भगवान उनकी पिटाई करें। अद्वैताचार्य भगवान के सेवक बनना चाहते हैं, गदाधर पंडित भगवान के सेवक है, श्रीवास ठाकुर भगवान के सेवक है। तो सेवक बनना ये एक बहुत ऊंची पदवी है, और उससे ऊंची पदवी है सेवकों का सेवक बनना, और उससे ऊंचे है सेवकों के सेवकों का सेवक बनना। वो पीर भत्तूर पद कमल यो दासदासान। भगवान कृष्ण अपने भक्तों की सेवा के उद्देश्य से बछड़ों को ढूंढने जाते हैं और फिर ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को चुरा लेते हैं, आप वो कथा को जानते हैं। और बाद में जब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास होता है तो भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं और श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के इसी स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा अर्पण की गई बहुत सुंदर प्रार्थनाएं, उसमें से एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है आज के प्रसंग के लिए। और वो है कि कैसे ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं आपके सामने तुच्छ हूं, जब कोई सूर्य के प्रकाश को नहीं देखता, जब रात का अंधकार होता है उस समय जुगनू फायरफ्लाई हिंदी में क्या जुगनू बोलते हैं, जुगनू छोटा सा कीड़ा है, वो बहुत तेजस्वी नजर आता है, ऐसा लगता है कि बहुत ही शक्तिशाली। लेकिन जब दिन का प्रकाश प्रकट हो जाता है, जब दोपहर के 12 बजे सूर्य अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट होता है, उस समय इतने सारे जुगनू भी हों तो उनके कोई महत्व नहीं होते। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के सुंदरता, उनके ज्ञान, उनके बल, उनकी योग्यता को नहीं जानने के कारण हम अपने आप को महान समझते हैं। लेकिन जब हम ध्यान लेते हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम, कृष्ण ही भगवान है, मैं कुछ भी नहीं, आई एम नथिंग, आई एम इनसिग्निफिकेंट, हम समझ जाते हैं मेरी कोई शक्ति है ही। जब अर्जुन जो गांधीधारी थे, महाभारत की लड़ाई में उन्होंने कितना अपने युद्ध की कलाएं दिखाई, इंद्रलोक से अर्जुन कई सारी विद्याएं लेकर आए थे, 12 साल के वनवास के समय अर्जुन स्वर्गलोक भी जाते हैं और महाभारत के युद्ध में कर्ण को वध करते हैं, भीष्मदेव से भयानक युद्ध करते हैं, द्रोणाचार्य के साथ लड़ते हैं। लेकिन वही अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण धरती छोड़कर चले जाते हैं, भगवान कृष्ण की रानियों को लेकर आ रहे होते हैं और कुछ साधारण जंगल के भील जातियों के व्यक्तियों के द्वारा वो पराजित हो जाते हैं, सत्य लगते हैं मैं वही अर्जुन हूं, ये वही गांडीव है, लेकिन अब कृष्ण नहीं। ऐसे कितने भी सुंदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हों, यहाँ पर इतने सारे सुंदर शैंडेलियर्स हैं, इतने अच्छे पंखे चल रहे हैं, भगवान के ऑल्टर पे लाइट है, कमरों में एसी भी है, पंखे हैं, लेकिन अगर पावर सप्लाई शक्ति चली जाती इलेक्ट्रिसिटी तो सब बेकार हो जाए। ऐसे कृष्ण सब शक्तियों के शक्तिमान, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मेरे से ही आ रहा है, अहम सर्वस्य प्रभव, और भगवान कहते हैं बलम बलावता चाहम, बलवान में बल मैं ही हूं। जो भी भगवान कहते हैं मैं बहुत क्या बताऊं, जो भी चीज आपको आकर्षक सुंदर शक्तिशाली लगती है, मम तेज अंश संभव, सर मेरे तेज का अंश है, अगर ये सरल बात को मैं जान लूं तो मुझे अभिमान नहीं होगा। लेकिन दुख की बात है कि मैं ये सुनता हूं, पढ़ता हूं, लेक्चर में बोलता हूं, फिर भूल जाता हूं। लेक्चर में बोलते हैं कि हमें अभिमान नहीं होना चाहिए, कृष्ण ही करता है, प्रकृति क्रियामानानी गुणै कर्माणी सर्वश अहंकार विमूढात्मा, हम ये कहते हैं श्लोक। लेकिन श्लोक बोलने के बाद अगर कोई कहता है प्रभु जी बहुत अच्छा प्रवचन है, तब मन में खुशी होती है, कोई तो भाग्यशाली है जो मेरी महिमा को जान रहा है। हम भूल जाते हैं कि प्रवचन में क्या बोल रहा, आज ये प्रवचन मैं अपने शुद्धिकरण के लिए दे रहा हूँ। ये इंद्र की लीला मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने अपने इलाके में इंद्र बनने का प्रयास कर रहे हैं, या अगर हम इंद्र नहीं बन सकते तो सबऑर्डिनेट इंद्र, तो ये भावना से मुक्त होना बहुत मुश्किल है। सेक्स डिजायर कामनाओं से मुक्त होना भी मुश्किल है, क्रोध से मुक्त होना मुश्किल है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल है अहंकार से मुक्त होना। इसीलिए हम रोज गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं मुझे अहंकार से मुक्त कर, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरोई दासे प्रिनपी कीना, गुरुदेव मेरे पर कृपा करो, मैं अपने आप को तृण से ज्यादा छोटा मान। एक है इंद्र का भाव कि मैं ईश्वर हूं और एक है हरिदास ठाकुर का भाव कि मैं तुच्छ सेवक हूं। एक है इंद्र जो कि भगवान के साथ स्पर्धा करना चाहते हैं और एक है हरिदास ठाकुर जो भगवान के चरणों में गिर के जब भगवान उनको बोलते हैं कि आप भगवान से निवेदन करते हैं कि मैं शरीर छोड़ना चाहता हूं, भगवान बोलते नहीं नहीं आप तो बहुत महत्वपूर्ण हो, मेरी सेवा में आप रहो। हरिदास कहते हैं मैं एक चिंटी के समान हूँ, इतने सारे आपके साथ भागते हैं वो मेरे सिर पर पैर रखने के योग्य है। इंद्र भी वैष्णव है, हमें ज्यादा निंदा नहीं करनी चाहिए इंद्र की, क्योंकि हो सकता है अगला जन्म इंद्र लोक में हो जाए, क्योंकि हम अगर शुद्ध नहीं बने और अपने अच्छे कर्म से स्वर्ग लोक चले गए तो अगला जन्म इंद्र लोक में हो जाएगा जहां पर इंद्र टेम्पल प्रेसिडेंट है। अगर हमने ज्यादा निंदा की तो वो शायद प्रसाद नहीं मिले, कोई तकलीफ हो रही। लेकिन इंद्र की घटना का हम जब बताते हैं तो इस तरह से बताते हैं कि जैसे किसी में रोग है, अगर मैं देखता हूं कि ये व्यक्ति में बीमारी है तो मैं उस व्यक्ति की निंदा नहीं करता, मैं देखता हूं कि रोग खराब है, इस रोग को कैसे दूर किया जाए। बाइबल में कहते हैं हेट द सिन नॉट द सिनर। तो गर्भ की बीमारी हर जीव में होती है और इंद्र में विशेष दिखाई पड़ती है। लेकिन हम ये भी जान सकते हैं कि इंद्र कितने महान वैष्णव हैं कि उनकी गलती के सुधार के लिए भगवान ने इतनी बड़ी लीला की, गोवर्धन लीला, और गलती के फलस्वरूप अंततः एक सुंदर लीला हुई जिसमें 7 दिन तक सारे ब्रजवासी गोप गोपियां नंद बाबा यशोदा गाय सब एक साथ श्याम सुंदर का दर्शन कर रहे थे। 7 दिन 7 रात्रि तक किसी ने कुछ खाया नहीं, किसी ने कुछ पिया नहीं, ऐसे ही उनके पास छोटी सी बोतल थी जब बीच बीच में पानी पी रहे थे। तो इंद्र वास्तव में इंद्र भगवान को बहुत प्रिय है, तभी तो भगवान ने उनके मान को भंग किया। जैसे पिता अपने पुत्र को सुधारते हैं ऐसे भगवान ने इंद्र का सुधार किया। जब कोई दो बच्चे खेल रहे हैं, गलती कर रहे हैं, मस्ती गलत कार्य कर रहे हैं, एक व्यक्ति का बेटा है और दूसरा पराया है, तो पिता पहले अपने बेटे को सुधारेगा, दूसरे को बाद में। ऐसे भगवान इंद्र पर कृपा करके उनका सुधार कर रहे हैं और इस लीला में हम देखते हैं कि कैसे उनके मान को भंग करते हैं। तो हमें रोज सुबह उठते ही पहले गुरुदेव से, प्रभुपाद से, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और स्पेशली बलराम जी से, नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे अहंकार को नष्ट करो, कि बलराम जी जो हैं वो सब अनर्थों को दूर करते हैं। रविवार को बलराम जयंती थी और सोमवार को कृष्ण जन्माष्टमी, पहले बलराम जी प्रकट होते हैं। देवकी के गर्भ में बलराम जी आकर तो गर्भ को तैयार करते हैं श्याम सुंदर के प्रकट होने के लिए, और बलराम जी के पास हल है, हल और गदा। जैसे अगर हम खेती में, अगर हम खेती करना चाहते हैं और सुंदर अनाज उगाना चाहते हैं तो पहले हल से जोतना चाहिए। तो भगवान बलराम जी हमारे हृदय रूपी खेती को अपनी कृपा के हल से जोत रहे हैं। तो गुरु के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, श्रील प्रभुपाद की जो आज्ञाएं हैं, वो हमारे हृदय रूपी हल को जोत रहे हैं। और कभी कभी वो कष्टदायक भी लग सकता है कि हल का प्रहार जब हृदय पे होता है तो वेदना होती है, जैसे एक डॉक्टर की सर्जिकल नाइफ से कभी दर्द भी हो सकता है। ऑफकोर्स अच्छे डॉक्टर्स हैं वो एनेस्थेशिया लगाते हैं, पता नहीं चलता। जनरली गुरु और वैष्णव जब कोई गलती भी करता है तो ऐसे सुधारते हैं कि पता ही नहीं चलता। लेकिन हमें जानना चाहिए कि जो भी गुरु और वैष्णव हमारे जीवन में कर रहे हैं वो हमारे सुधार के लिए है, वो हमारी भक्ति के प्रगति के लिए आवश्यक है। तो हमारी उद्देश्य होना चाहिए कि हम नम्र बन जाए। भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन जो हम सबके लिए बहुत प्रेरणा देने वाला है, आज सुबह मैंने देखा यहाँ पर जपा से पहले एक भक्त पढ़ रहे थे नाम के बारे में। कौन सी किताब जी बजा वो, ये तो सुंदर भजन भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे, तुम्हारे लोई ते आमी ओही न अवतार। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैंने आपके लिए अवतार लिया। तो भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे एक और एक भजन में कहते हैं, भगति विनोद प्रभु चरण पोड़िया से हरि नाम मंत्र लोई लो मागी। भक्ति विनोद ठाकुर भगवान के चरणों में गिर के निवेदन करते हैं हरि कृष्ण मंत्र। इसीलिए हरि नाम जप करना सरल भी है, कठिन भी है। अगर हम नम्र हैं हरिदास ठाकुर की तरह तो बहुत सरल है, हरे कृष्ण मंत्र स्वाभाविक निकलता है। लेकिन अगर हमारे अंदर अभिमान है, अगर हमारे अंदर मिथ्या अहंकार है तो नाम लेने में कठिनाई होती है, नाम में बाधाएं आती। जैसे एक सुंदर एग्जाम्पल है इंजीनियरिंग का या फिजिक्स का, अगर कोई एक वायर है जो करंट ले जा रही है, जो वायर जैसे सब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के पीछे वायर है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, अगर वो वायर में बहुत रेजिस्टेंस है, जैसे क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रतिरोध, यस, तो अगर उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो करंट कम हो जाएगा। लेकिन आपने फिजिक्स में पढ़ा है वी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, यानी ओम नमो भगवते वाला ओम नहीं, ये दूसरा ओम है, सुना आपने ये लॉ नहीं? अब भाग्यशाली नहीं सुना तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सब पढ़ना पड़ता है इंजीनियरिंग डिग्री के लिए, बाद में उपयोग होता नहीं है उसका। ये राइट right? 12th सेमेस्टर यानी द सेम कॉलेज इन बनारस यूनिवर्सिटी। तो ओम्स लॉ में ऐसे है कि अगर वोल्टेज फिक्स है, समझो 230 वोल्ट है, और करंट अगर प्रतिरोध रेजिस्टेंस बहुत कम है तो करंट बहुत ज्यादा बह सकता, लेकिन अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, समझो रेजिस्टेंस है 10 ओम तो करंट होगा 23 एम्पियर, और रेजिस्टेंस है 100 ओम तो करंट होगा 2.3 एम्पियर, राइट? प्लीज करेक्ट मी मोरी करो, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 40 साल पहले पुराना ज्ञान सुने हैं। तो जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो करंट कम हो जाता है, वोल्टेज सेम है। ऐसी भगवान की कृपा वोल्टेज की तरह है, वो अनंत है, और आपके हृदय का अहंकार अगर ज्यादा है तो कृपा रूपी करंट बहुत कम मिलेगा, लेकिन अगर आप अपना अभिमान को कम कर देते तो और कृपा मिलती है, और कम कर देते और कृपा। और अगर आप हरिदास ठाकुर की तरह त्रिनादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णु न अमानी न मान देना, अगर ये भाव आ जाता है तो अनंत रूप से हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे, अनंत कृपा मिल जाए, कीर्तनीय सदा हरि। तो ये हमारी अभिलाषा होनी चाहिए कि हमें इंद्र की गलतियों से सीखना चाहिए, मुझे अहंकार नहीं करना, मैं जो भी हूं भगवान की कृपा से। कभी कभी ज्यादा सेवा करने से, ज्यादा सफलता मिलने से हमें अभिमान हो जाता है, लेकिन कभी कभी हमारी सेवा में सफलता नहीं मिलने से हमें डिप्रेशन हो जाता है, वो भी अहंकार का लक्षण है। जब भक्त बहुत विफल हो जाते हैं, समझो आप बाहर गए और आपने मेट्रो में पुस्तक बांटे, यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया, लेकिन कोई बुक्स ले ही नहीं रहा, कोई विद्यार्थी आ ही नहीं रहे आपके प्रवचन के लिए, तो लगता है कि मैं बहुत बेकार हूं, मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, वो नम्रता नहीं है, वो भी एक प्रकार का अहंकार है। वो ये है कि अहंकार में चोट लग गई है इसलिए दुख हो रहा है। हमें सोचना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सका, वो भी भगवान की दया है, मैंने पूरे दिन प्रयास किया सिर्फ एक भगवद गीता बांटी, या पूरे दिन प्रयास किया और 1000 गीता बांटी, करने वाले सब राधिका रमन जी हैं, आई एम पपेट इन योर हैंड, मेक मी डांस। तीन चार दिन पहले वो दिन था सोमवार को जिस दिन शिला प्रभुपाद अमेरिका के लिए प्रस्थान किए, और हम पढ़ रहे थे उस दिन, जब प्रभुपाद अमेरिका में गए उन्होंने कविता लिखी, और कविता के अंत में वो लिखते हैं कि हे कृष्ण मैं आपके हाथ में कठपुतली हूं, जैसे आप मुझे नचाना चाहो वैसे नचाओ। तो अगर कोई नचाने वाला किसी कठपुतली को ज्यादा नचाता है, किसी को कम नचाता है, किसी को बोलता है खड़े रहो, किसी को बोलता है लेफ्ट रहो राइट जाओ, तो कठपुतली की सफलता इसी में है कि जैसे नचाए। रामायण में भी हनुमान जी की योग्यता बहुत ज्यादा है और कोई गिलहरी उसकी बहुत कम है, अगर सब हनुमान बन गए तो कोई मजा नहीं आएगा, नहीं अगर मल्टीपल हनुमान हो गए, तो हनुमान जी एक हैं लेकिन जांबवंत एक हैं, सुग्रीव एक हैं, ऐसी इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद के अनेक अनेक शिष्य हैं, सबको भगवान ने अलग अलग प्रकार की शक्तियां दी हैं, और इस मंदिर में भी अलग अलग भक्त हैं, किसी को भगवान ने मैनेजमेंट स्किल दिया है, किसी को गाने की कला दी है, किसी को कोई कला नहीं दी है, बस नम्र भाव की कला दी है, किसी को खाली प्रसाद बनाने की सेवा दी है, किसी को सिर्फ प्रसाद खाने की सेवा दी है, बहुत इजी सेवा है। मैं जब इस्कॉन में आया था तो यही सेवा करता था, और अभी भी इसी के आधार पर टिका हुआ हूं। जो भी हम हैं, हमें न तो अहंकार करना चाहिए न डिप्रेस्ड होना चाहिए, दोनों एक ही चीजें हैं। एक होता है बहुत अहंकार होना, मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूं, देखो मेरे कार्यक्रम में कितने लोग आ रहे हैं, मैं देखो कितने लोगों को फुल टाइम सेवा में लगा रहा हूं, और एक है दुख करना, ओ मैं कोई अच्छा गा नहीं पा रहा, मेरे प्रवचन में लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे, मैं कितना अभागा हूं। मैं जैसा भी हूं मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे हैं मैं कृष्ण का हूं, आमी तो तोमार तुम ही तो अमार, तो कंपटीशन का कोई प्रश्न नहीं उठता। अभी इस्कॉन में कितने, अभी यहां दिल्ली में मैंने सुना कितने 5 मंदिर हो गए अभी, हाउ मेनी टेंपल, 5 मोर देन 10, पहले ही तो कैलाश, पंजाबी बाग, रोहिणी, द्वारका, और मुझे सबके नाम नहीं पता, कितना आपका भाग्य है। श्रील प्रभुपाद, श्रील गोपाल कृष्ण महाराज, प्रभुपाद के शिष्य और शिष्यों के शिष्यों के प्रयास से इतना एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन आपस में हमें सोचना चाहिए, अगर कोई दूसरा मंदिर ज्यादा अच्छे सेवा कर रहे हैं तो हमें खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं। हमें कोई ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या जो है वो भौतिक बीमारी है। सब जगह पे हरे कृष्ण मंत्र ही फैल रहे, कभी कभी भक्तों में ईर्ष्या हो जाती है। जब मैं पहले बंबई में ज्वाइन हुआ था राधा गोपीनाथ मंदिर में, तो मैं चौपाटी मंदिर जस्ट शुरू हुआ था, परम पूज्य राधानाथ महाराज उस समय वहां पर जस्ट आना शुरू हुए थे, पूरा आए नहीं थे, और बहुत सारी समस्याएं थी मंदिर में, तो इतनी स्पर्धा के भाव होती, पुस्तक बांटते लेकिन स्पर्धा बहुत होती थी, तो दो डिवोटीज में स्पेशल कंपटीशन था। जनरली टॉपर्स में ज्यादा स्पर्धा होती, नीचे लेवल पे कोई कंपटीशन नहीं होता। तो एक भक्त थे, वो रात तक पुस्तक बांटते गए, और रात को आए उन्होंने 108 पुस्तक बांटे एक दिन में भगवद गीता, और आकर सो गए 10 बजे। और दूसरे भक्त जो कि कॉम्पिटिटर थे, वो पता लगा रहे थे कितना हुआ है, तो पता चला 108 है, तो वो रात को और आधा घंटा वेट करके 109 करके फिर आके सो गए। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, ये भक्त जो पहले सोए थे वो वेट कर रहे थे, वो 11 बजे उठे और 2 पुस्तक और बांट के आए। तो अच्छा भी है, लेकिन डिपेंड करता है मोटिवेशन क्या है। अच्छा है, हमें स्पर्धा ऐसी होनी चाहिए, प्रोपाई कहते थे हेल्थी कॉम्पिटिशन, है ना, कह रहे इस सब कैलाश में ज्यादा प्रचार हो रहा है तो यहां भी होना चाहिए। लेकिन वो बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, तो कितना भी करें उतना बराबरी नहीं हो सकती। और अगर ज्यादा हो भी जाए हमारे से तो वही प्रभुपाद की कृपा है। तो ईर्ष्या ही है जो हमें भक्तों में द्वेष पैदा कराती है, और इसी से इस्कॉन में खतरा है। प्रोपा जी कहते थे ये मूवमेंट को बाहर से कोई खतरा नहीं है, जब तक हम 4 नियम पालन कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती। लेकिन प्रोपा जी कहते हैं कि खतरा अंदर से है, क्योंकि अंदर से आपस में अगर झगड़ा है तो फिर माया देवी पराजित कर लेते हैं। अशिला प्रभुपा जी के एक घटना है, प्रभुपा जी बताते हैं कि गुरु जी विश्राम कर रहे हैं, और दो शिष्य पैर मसाज कर रहे हैं, सुना नहीं, दोनों अच्छा मसाज कर रहे हैं, लेकिन जो दाईं तरफ कर रहा है उसको लगा रहे, तो दूसरा वाला व्यक्ति ज्यादा अच्छा कर रहा है, तो उसकी स्थिति को कम करने के लिए, उसकी सेवा में बाधा डालने के लिए, वो दाईं तरफ मसाज करते करते बीच में बाईं तरफ थोड़ा पिंचिंग कर देते हैं, और जब ये दूसरा व्यक्ति एक है तो वो दाईं तरफ पिंचिंग करता है, बेचारे गुरु जी परेशान हो जाते। ऐसी हमारी इस्कॉन कितनी बड़ी बॉडी है, यहां भारत दिल्ली में 10 से ज्यादा केंद्र, बंबई में केंद्र, कलकत्ता में केंद्र, चेन्नई में केंद्र, रशिया में केंद्र, यूक्रेन में केंद्र, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं प्रभुपाद जी के ब्रांचेस उच्च लोकों में भी होगी, हम गए नहीं अभी तक, अभी यमलोक में भी खोलना चाहिए ब्रांचेस में। अगर यमलोक में अगर थोड़ा सा भागवतम सेट मिल जाए, हरि नाम हो जाए, तो वो भी गोलोक बन जाए। यमलोक और गोलोक में अंतर क्या है? जहां पर कृष्ण है वही गोलोक है। तो मान लो अब यमलोक में जाते हैं और वहां पर हरि नाम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अपने आप कृष्ण की कृपा प्रकट हो जाती है। तो हमें यही प्रयास करना चाहिए कि भगवान से रोज प्रार्थना करनी चाहिए, वह मुझे इतना नम्र बना दो घास की तिनका की तरह। कभी हमें बोलो से बिना अपराध घूची शीतना में रुचि कृपा बल हो हृदय संचार। कब मेरा वो दिन आएगा कि जब मेरा अपराध दूर हो जाएंगे। त्रिनादि कही ना कबे निज मानी, कब मैं अपने आप को घास के तिनके से भी छोटा मानूंगा। आज के दिन में तो कोई पैर रखता है, कोई थूक देता है, कोई गंदगी कर देता है, और कोई भक्त हमारे साथ गलत व्यवहार करता है तो हमें सोचना चाहिए कि ये मुझे नम्र बनाने में मदद कर रहे हैं। आफ्टर ऑल नम्रता सहनशीलता कैसे आती है? थ्योरी तो बुक्स में पढ़ते हैं, प्रैक्टिस जो होता है वो लोगों के बीच में होता है। और स्पेशली क्योंकि हम तो भक्तों के साथ ही रहते हैं, तो भक्त ही है जो हमें शुद्ध बनाएंगे। कोई गलत व्यवहार करे, कोई कठोर बोल दे, सोचना चाहिए कि ये मुझे मदद कर रहे हैं प्रैक्टिस करने में, सहन कर। हमें इसको धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन हमें दूसरों को नम्र बनाने में मदद नहीं करनी चाहिए। आप कहें प्रभु जी मैं आपको डांट रहा हूं इसीलिए क्योंकि आप नम्र बनो, त्रिनादपि सुमीचे न। हमें क्योंकि ये जो मटीरियल नेचर इतना पावरफुल है कि कहीं ना कहीं से आपको गलत व्यवहार होंगे, चाहे भक्त हो, अभक्त हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो। गृहस्थ आश्रम में भी इन आपस में थोड़ा फ्रिक्शन रहता ही है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे दो बर्तन हैं, जब भी टकराएंगे, पास आएंगे तो आवाज आएगी, ये निर्जीव है, इसमें आत्मा नहीं है। फिर दो व्यक्ति पास में आएंगे तो टकराव हो गई, लेकिन बस त्रिनादपि सुनी चाहिए। कम से कम दिन में 100 बार याद दिलाना चाहिए, मुझे नम्र बनना है, मुझे शुद्ध बनना है, मुझे नम्र बनना है। जरूर गुरु की कृपा से बन। और एक अच्छा पॉइंट है जो प्रभुपाद के शिष्य जो तात्पर्य में बता रहे हैं, जो कि कैसे जो श्लोक हमने पढ़ा 8वां श्लोक, उसमें बताया गया 10वें श्लोक में कि वास्तव में सब कुछ बरसात के ऊपर आधारित है। एक्चुअली ये सत्य है, ये नंद बाबा जो फिलोसफी बोल रहे हैं सत्य है। अभी इस बार महाराष्ट्र में बहुत कम बरसात हुई है, यहाँ पर भी कम हुई है ना, पूरे भारतवर्ष में कमी है। तो हम जान सकते हैं कि ये यज्ञ की कमी के कारण। मान लो अगर बरसात नहीं हो, अनाज नहीं हो, तो हम क्या खा सकते हैं? मान लो मैं करोड़पति भी हूँ, मेरे पास 500 के नोट का एक स्टैक है और 1000 के नोट, डाइजेशन के लिए क्या अच्छा है 500 के नोट या 1000 के नोट? हम कुछ कर नहीं सकते। एक्चुअली ये जो पेपर मनी है ये बोगस है, एक्चुअली मतलब बोगस। मुझे भी जरूरत है, मेरे जेब में भी है, रखने पड़ते हैं, लेकिन इसकी वास्तविक कीमत नहीं है। वास्तविक कीमत होती है अनाज की, सोने की, बरसात की, इसके ऊपर हम आधारित हैं। ये तो आर्टिफिशियल करेंसी है जो आज समाज में प्रचलित हो गई और भक्तों को भी रखना पड़ता है, लेकिन वास्तव में पालन के लिए क्या चाहिए? हमें प्रभुपाद जी बोलते हैं अच्छी खेती चाहिए, जमीन, बरसात, गाय चाहिए। पहले जमाने में जानते थे नंद बाबा इतने धन धन धन्यवान माने जाते हैं, उनके 9 लाख गाय थे, जिसके पास गाय है, जमीन है, दूध है, अच्छे अनाज है, वही व्यक्ति समृद्धिशील। क्योंकि यही मानवता के शरीर के पालन के लिए जरूरी है। जब तक हमारे शरीर में आवश्यक अन्न नहीं मिलेगा तब तक मुश्किल है शरीर को बनाए रखना। गीता में भगवान कहते हैं अन्ना भवंती भूतानि पर्जन्या अन्न संभव, यज्ञ भवती पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्र। यज्ञ जरूरत है, और कलयुग में यज्ञ है नाम संकीर्त। हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरंजन। इस श्लोक को चैतन्य महाप्रभु ने सबसे ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि इस श्लोक बताता है कि कैसे हरि का नाम ही एकमात्र उपाय है परम सफलता प्राप्त करने की। जब श्रील प्रभुपाद धरती पर लीला कर रहे थे आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में, कुछ भक्त, कुछ संसारी व्यक्ति आए प्रभुपाद के पास और कहने लगे स्वामी जी इस बार आंध्र प्रदेश में बरसात नहीं हो रही, आप हमें कुछ पैसे दो जिससे कि लोगों की समस्याओं का हल कर सकें। कई लोगों को यह धारणा है कि इस कौन संस्था, मतलब इनको विदेश से पैसा मिलता है ऐसे, मतलब ये फॉरन सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन। सत्य यह है कि हमारी संस्था में हर एक जगह पर लोकल फंड्स होते हैं, जो भी आप जैसे सिंसियर गृहस्थ डोनेशन देते हैं उसी से भगवान की सेवा को हम चालू रखने का प्रयास करते हैं। तो उनको लग रहा था कि अमेरिका से शायद पैसा आता है, अगर वो पैसा दे तो हम लोगों को बांट सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया कि अगर बरसात की कमी है तो पैसे से क्या लाभ होगा, अगर आपको बरसात की कमी है तो आपको यज्ञ करना चाहिए, कीर्तन यज्ञ। अगर आप सब मिलकर उच्च स्वर में भगवान के नाम कीर्तन करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम उच्च स्वर में नाम कीर्तन करते हैं तो कीर्तन से अपने आप बरसात होती है। और ऐसा हुआ, प्रभुपाद जी के आदेश से जब भक्तों ने कीर्तन किया तो बरसात होने लगी। तो यही तरीका है वास्तव में। कुछ यहाँ पर कीर्तन हो रहा है लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हम और ज्यादा बढ़ाएं। हमें कोशिश करना चाहिए कि यथाशक्ति घर घर में हर दिन कार्यक्रम हो। अभी मैं लिस्ट देख रहा था यहाँ पर जो कार्यक्रम के रिसेंटली एडेड भक्ति वृक्ष और भी कार्यक्रम सेंटर्स बढ़ रहे हैं पंजाबी बाग मंदिर में। इतने बढ़ जाने चाहिए कि हर घर में एक भक्ति वृक्ष हो, हर घर में कार्यक्रम, हर घर में कीर्तन की आवाज सुनाई कर। ये श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा थी पूरे विश्व के लिए, इसलिए दिल्ली के लिए। श्रील प्रभुपाद जी ने कितना समय बिताया यहाँ पर, पहले लाजपत नगर में, और प्रभुपाद जी की हमेशा इच्छा थी कि यहाँ पर और प्रचार बढ़े। और हम अगर वैयक्तिक रूप से शुद्ध हैं, अगर हमारी साधना बहुत अच्छी है तो अपने आप भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी। अगर हमारा अहंकार बहुत कम है या नहीं है तो गुरु और भगवान और वैष्णव हमें अपने योग्य पात्र मानेंगे, और हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों को वितरित भी कर सकते हैं। 5 मिनट बचे हैं, मैं चैतन्य लीला से कहानी बताना चाहूंगा जो इस बात का सपोर्ट करती है कि कैसे भगवान अपने भक्त पे कृपा करते हैं। एक भक्त थे जिनका नाम था वल्लभ भट्ट। उनको बहुत अभिमान था, ये महान भक्त हैं, इनको वल्लभाचार्य बोलते हैं, अभी पुष्टि मार के महान आचार्य हैं। नहीं कभी कभी महान भक्तों को भी थोड़ा अभिमान हो जाता है। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु के पास आए और कहने लगे कि आपके दर्शन से मैं बहुत पवित्र हो गया, कृष्ण शक्ति बिना ना ही तार प्रवर्तन, कृष्ण की शक्ति के बिना कोई नाम प्रचार नहीं कर सकता, आप इतना नाम प्रचार कर रहे हो यानी आप स्वयं कृष्ण हो। चैतन्य महाप्रभु ने जवाब दिया, वो बताते हैं कि अगर आपकी कोई प्रशंसा करे तो कैसे जवाब देना चाहिए। हो सकता है वो प्रशंसा सत्य भी हो, अगर आपने सही में कुछ किया है और दूसरे भक्त प्रशंसा करे तो क्या करना चाहिए। महाप्रभु बोले, महाप्रभु कहे सुन भट्ट महामति, मायावादी सन्यासी आमे न जाने कृष्ण भक्ति। हमी तो मायावादी सन्यासी, हमी कृष्ण भक्ति ना ही जानी, मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, मैं कृष्ण भक्ति जानता ही नहीं हूँ। लेकिन ये देखो आपके सामने अद्वैत आचार्य, ये भगवान के अवतार है, ये महान भक्त हैं, इनके कारण मुझे प्रेरणा मिली। और ये देखिए नित्यानंद प्रभु अवधूत, ये कृष्ण प्रेम के नशे में मग्न रहते हैं। और मेरे सामने ये हैं सर्वम भट्टाचार्य, ये षट दर्शनों को जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे भक्ति योग सिखाया। अभी सत्य है कि सार्वम भट्टाचार्य मायावादी थे, वो बृहस्पति के अवतार थे, वो बद्ध जीव थे, लेकिन महाप्रभु की कृपा से मुक्त हो गए। लेकिन महाप्रभु क्या कर रहे हैं, जिनको उन्होंने प्रचार किया वो बोल रहे हैं ये मेरे गुरु हैं, अब ये मेरे गुरु बनने लायक है। मतलब नम्रता है, जो कभी क्रेडिट नहीं ले रहे कि हाँ मैं इनको बहुत सागर से बाहर निकाला, बोल रहे हैं इनके कारण मुझे भक्ति समझ में आए। और मेरे साथ हैं रामानंद राय, रामानंद राय कृष्ण रसेर निधान, वो एक ओशन है, कृष्ण भक्ति के ओशन है। तेहो जानी ल कृष्ण स्वयं भगवान, उन्होंने मुझे सिखाया कि कृष्ण भगवान, उन्होंने मुझे भक्ति सिखाई है। दास्य रस, सखी रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस क्या होता है, ये रामानंद राय से मुझे सीखने को मिला है। इस तरह से वो सब भक्तों को क्रेडिट देंगे, ये देखो मेरे सामने हरिदास ठाकुर हैं, इनसे मैं सीख रहा हूं कैसे हरि नाम लेना चाहिए। वो रोज 300,000 नाम जप करते हैं, वो मेरे प्रेरणा के स्रोत। इसके अलावा आचार्य रत्न, आचार्य निधि, ये देखो गदाधर पंडित, जगदानंद पंडित, शंकर पंडित, वक्रेश्वर पंडित, काशीश्वर, मुकुंद, वासुदेव, मुरारी, ये सब भक्त हैं, ये मुझे प्रेरणा दे रहे हैं। आई हैव लर्न फ्रॉम देम। महाप्रभु दिखा रहे हैं कोई जूनियर हो, सीनियर हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सबको अपने से श्रेष्ठ मानना चाहिए। तब फिर वल्लभ भट्ट ने पूछा, ऐसे भक्त कहां पर है? महाप्रभु बोले, कुछ तो सामने दिख रहे हैं और कुछ रथ यात्रा के समय आएंगे। रथ यात्रा के समय जब सब भक्त आए तो वल्लभ भट्ट देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनको ऐसा लगा कि जैसे सूर्य के प्रकाश के सामने एक जुगनू होता है। इसके बाद फिर भी वल्लभ भट्ट के मन में थोड़ा अभिमान था, वो भगवान के पास आए, बोले भागवत टीका करियो स्वामी, आई हैव रिटन कॉमेंट्री ऑन श्रीमद भागवतम, मैं आपको भागवत कॉमेंट्री सुनाना चाहता हूं, मेरी कॉमेंट्री आप सुनो हरे कृष्ण। मतलब इतना उनका अभिमान था। महाप्रभु क्या बोले, भागवत अर्थ बुझीते न पारी, ये मेरी बुद्धि से परे है समझना, मैं तो अधिकारी नहीं हूं, आई एम नॉट क्वालिफाइड। बसे कृष्ण नाम जप करी, संख्या नाम पूर्ण नहीं है, रात्रि दिन है, मैं दिन रात जप कर रहा हूं, मेरा जप ही पूरा नहीं हो रहा तो भागवत कभी पढ़ूंगा। अच्छा नाम जप के बारे में, मैं नाम जप के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं, मैं सेमिनार दूंगा नाम जप के बारे में। तो महाप्रभु बोले देखो कृष्ण नाम के मैं ज्यादा अर्थ नहीं स्वीकार करता, मुझे मालूम है कृष्ण के दो नाम है, एक है श्याम सुंदर और दूसरा यशोदा नाम। तो फिर वल्लभ भट्ट सोचने लगे कि भगवान क्यों मेरी सेवा को स्वीकार नहीं कर रहे, बहुत निराश हो गए। फिर वो गदाधर पंडित के पास गए, बोले मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं, मैंने टीका लिखी है। और गदाधर पंडित असमंजस में पड़ गए, क्योंकि बाकी भक्त नहीं सुन रहे, भगवान नहीं सुन रहे, अगर मैं सुनूंगा तो सब भक्त मेरी निंदा करेंगे, अगर मैं नहीं सुनूंगा तो वल्लभ भट्ट को बुरा लगेगा। तो वल्लभ भट्ट की खुशी के लिए थोड़ा थोड़ा सुन रहे थे, लेकिन प्रार्थना कर रहे थे भगवान मुझे बचाओ, इस स्थिति मुझे क्या करना चाहिए मुझे बताओ। एक दिन वल्लभ भट्ट फिर से आए और अद्वैत आचार्य को बोले आप प्रकृति हो, भगवान पुरुष है, नहीं भगवान इंजॉयर है, भगवान मेल है, सब फीमेल है दुनिया में, भगवान ही पुरुष है, हम सब प्रकृति है, हमसे पत्नी है, कृष्ण पति है, पतिव्रता स्त्री को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, वो भी जोर से तो कभी नहीं लेना चाहिए। पहले जमाने में ऐसा था कि पति का नाम नहीं लेते, है ना, चुन्नू के पापा आ गए, है ना, उसके पिताजी आ गए, तो आप जोर जोर से कृष्ण का नाम ले रहे, कृष्ण आपके पति हैं। अद्वैत आचार्य बोले मोर से क्यों पूछ रहे हो, सामने आपके चैतन्य महाप्रभु हैं, वो जवाब देंगे। महाप्रभु से पूछा, महाप्रभु क्या बोले, भट्ट तुम्ही नाही जाने धर्म मर्म, आपको धर्म पता ही नहीं है, स्वामी आज्ञा पालन यही पतिव्रता धर्म, पहली धर्म है पत्नी का पति की आज्ञा पालन करना, और हमारे पति की आज्ञा है पति राज्ञा निरंतर नाम लय, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, निरंतर कीर्तनीय सदा हरि। तब वल्लभ भट्ट और भी निराश हो गए, अरे हम लास्ट भाग पे पहुंचे, लास्ट बार हो गए, बोले अभी ये लास्ट अस्त्र लास्ट में ट्राई करो, मैंने भागवत पे टीका लिखी है और मैंने श्रीधर स्वामी की टीका का खंडन किया है, जो ओरिजिनल 12वीं सदी में श्रीधर स्वामी जो ओरिजिनल टीकाकार है उससे ज्यादा अच्छा मैंने लिखा है, क्योंकि श्रीधर स्वामी ने उस समय लिखा था वो समय के अनुसार ठीक था, लेकिन अभी अभी उसको नहीं स्वीकार किया जा सकता। प्रभु हाथी कहे स्वामी जे न माने, वेश्यार भीतर तारे करिया गणने, जो स्वामी को नहीं स्वीकार करता वो वेश्या के समान। उसके दो मीनिंग है, एक स्त्री जो अपने पत्नी के पति के प्रति वफादार नहीं है वो वेश्या के समान है, और दूसरा अर्थ है कि आप श्रीधर स्वामी को नहीं स्वीकार कर रहे तो आपकी टीकाएं बेकार है। तब फिर वल्लभ भट्ट को समझ में आ गया, और रात को गए और रोने लगे और सोचने लगे कि क्या कारण है, मेरी अपराध हो रहे हैं। फिर उनको याद आया कृष्ण जैसे इंद्रेर अभिमान खंड को रीला, जैसे कृष्ण ने इंद्र के अभिमान को नष्ट किया वैसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मेरे अभिमान को दूर किया। और फिर वो दौड़ते हुए चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे आमी अज्ञा जीव अज्ञोचित कर्म कैलु तुम्हारा जे मूर्ख आमी पंडित प्रकाशीलु, आई एम अ ग्रेट फूल, आई एक्टेड लाइक अ फूल बाई ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट माई लर्निंग इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने अपनी विद्वता दिखाई, तुम्ही ईश्वर आप भगवान हो, आप मेरे अभिमान को नष्ट कर दिया, मैं इतना मूर्ख हूं मेरे को पता नहीं चला, लेकिन आपने कृपा की जैसे इंद्र पे की थी, मेरे अज्ञान रूपी कैटरेक्ट, क्या क्या बोलते हैं कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, अभिमान एक मोतियाबिंद के समान है, और आपने अपनी कृपा रूपी अंजन लगा के मेरे कैटरेक्ट को दूर कर दिया, अभिमान को, प्लीज मेरा अपराध को क्षमा करो। भगवान ने कैसे जवाब दिया, भगवान ये नहीं बोले हाँ बहुत अभिमानी हो, अच्छा हुआ आप नम्र बन गए ना, वेरी गुड, अभी झाड़ू लगाओ अभी, नहीं, भगवान बोले प्रभु कहे तुम्ही पंडित महाभागवत, आप तो पंडित भी हो, प्योर महान भक्त भी हो, दुई गुण जहां तहां नाही गर्व पर्वत, जहां पर इतने अच्छे गुण है वहां पर अभिमान का पर्वत रखने से क्या फायदा। मतलब पहले प्रशंसा की, आप इतने अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप रोज मंगल आरती में आ रहे हो, आप इतने अच्छे हो, फिर ये झूठ क्यों बोला आपने, है ना। जैसे दो तीन प्रशंसा करके बीच में एक इंजेक्शन दे दी जिससे उनको बुरा भी नहीं लगे। चैतन्य महाप्रभु उनको बोले, श्रीधर स्वामी निंदा करी, आपके अंदर इतना अभिमान कि श्रीधर स्वामी की टीका करने लगे, श्रीधर स्वामी नहीं माने ऐसा गर्व धरी। ये आपका अभिमान था, श्रीधर स्वामी की कृपा से ही कोई व्यक्ति भागवत समझ सकता है। प्रभुपाद जी कभी ये नहीं बोलते थे मैंने कोई नई चीज दी है, जो श्रीधर स्वामी ने दिया, जीव गोस्वामी ने दिया, रूप गोस्वामी ने दिया, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने दिया, वही मैं दोहरा रहा हूं। और यही एक वैष्णव की सफलता है। तो जो भाग्य श्रीधर स्वामी को नहीं स्वीकार करता उसका उसकी भक्ति खराब हो जाती। आप अभिमान छोड़ो। लास्ट इंस्ट्रक्शन दिया जो आप सब अपने हृदय में धारण करिए, मेरे पीछे कहिए, अपराध छाड़ी कर कृष्ण संकीर्तन, अचिर पाई बे तबे कृष्ण रचरण। गिव अप ऑफेंसेस, अपराध छोड़ दो और कृष्ण नाम कीर्तन करो, और अचिर, अचिर मतलब बहुत जल्दी कृष्ण की प्राप्ति। वल्लभ भट्ट बोले भगवान से, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हो तो आप फिर से मेरे घर प्रसाद के लिए आइए। और महाप्रभु ने स्वीकार किया। तो ये कहानी को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। हमें इसे वल्लभ भट्ट की निंदा नहीं करनी चाहिए, महान वैष्णव हैं, आचार्य हैं, लेकिन कभी कभी भगवान अपने महान भक्तों के द्वारा हमें सिखाते हैं। जैसे सास अगर बहू को कुछ सिखाना चाहती है तो कैसे सिखाएंगे, बेटी के द्वारा, क्योंकि बहू अभी अभी आई है, शायद वो डांट नहीं स्वीकार कर पाएंगे, तो बेटी के द्वारा। तो कृष्ण अर्जुन के द्वारा हमें सिखा रहे हैं, वल्लभ भट्ट के द्वारा हमें सिखा रहे हैं, इंद्र के द्वारा हमें सिखा रहे हैं कि जीवन की सफलता का सूत्र है, फॉर्मूला है, त्रिनादपि सुनीचे न त्रोरपि सहिष्णु न अमानी न मानदे न कीर्तनीय सदा हरि। तो दो मिनट आप सब प्रार्थना करिए, मेरे लिए भी, अपने लिए भी, कि हम इस गुण को प्राप्त करने का प्रयास कर सकें गुरुदेव की कृपा से, भगवान की कृपा से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने प्रभु जी कुछ कॉमेंट करना, यस में आगे बढ़ता है। प्रभु जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु तो उन भक्तों की गुणगान कर रहे हैं जिनको उन्होंने ही प्रचार किया, ये तो ऐसा लग रहा है कि फ्लैटरी है, मतलब झूठी प्रशंसा जैसे लग रहा है। जब कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ जाता है तो उसको वास्तव में ऐसा लगता है, वो फ्लैटरी नहीं होती, उसको ऐसा लगता है कि वास्तव में सब व्यक्ति मेरे से ज्यादा अच्छे हैं। और जैसे ही कोई व्यक्ति पतित हो जाता है उसको वास्तव में लगता है सब पतित हैं। जैसे दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को प्रोजेक्ट दिया गया, युधिष्ठिर को कहा गया कि आप पता लगाइए कि आपसे बुरा कोई व्यक्ति है क्या, और दुर्योधन को कहा गया कि आपसे अच्छा कोई व्यक्ति है क्या। तो युधिष्ठिर पूरा राज्य में घूम के आए, बोले मैंने पूरा देखा, मेरे से बुरा कोई नहीं है। और दुर्योधन बड़ी नम्रता से बोले मैंने पूरा देख लिया कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है। तो उनको जेन्युइनली लग रहा था। प्रभुपाद जी बोलते हैं डिवोटी डज नॉट ओनली स्पीक लाइक दैट बट ही फील्स लाइक दैट। ये सच्चे भक्त की आप प्रशंसा करोगे तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं योग्य नहीं, अभी मेरे केस में, या जो बद्ध जो प्योर नहीं है उनको भी प्रशंसा करें तो हमें लगेगा कि सत्य है, फिर भी हमें लगता है चलो एक्चुअली है सत्य लेकिन बोलना अच्छा नहीं, चलो गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा है, लेकिन मन में हम सोच रहे हैं मेरी मेरी क्वालिफिकेशन। अगर गुरु की कृपा भी है तो मैंने स्वीकार की ना, बाकी ने तो स्वीकार नहीं की, एटलीस्ट मैं उसके पात्र हूँ, ये मेरी योग्यता है। ऐसे बहुत मुश्किल है फॉल्स प्राइड को त्याग करना, कई जन्म लगते हैं, इसलिए त्रिनादपि त्रिनादपि बोलना आसान है, लेकिन अगर ये गुण मिल जाए तो इट्स लाइक माउंट एवरेस्ट की तरह भक्ति का। और फिर उसके बाद और भक्ति शुरू होती है, एवरेस्ट माउंटेन के बाद और आगे, फिर आगे असली सेवा पदरसम तक धीरे धीरे। तो मैं भी ऐसे लॉफ्टी चीजें बोल रहा हूँ जो शास्त्रों में लिखे हैं अपने शुद्धिकरण के। आप सब एकत्रित वैष्णव गुरु और सीनियर भक्त जूनियर भक्त सबके चरणों में भिक्षा मांगता हूँ कि एक दिन ये गुण थोड़ा सा भी आ जाए तो मेरा जीवन सफल होगा। हाँ, वल्लभ भट्टी बाद में वल्लभाचार्य का है, लेकिन हमें ख्याल रखना चाहिए। एक बार क्या हुआ था, भक्तों ने गलती से ये लीला को बैक टू वर्ल्ड मैगजीन में छाप दिया, प्रभुपाद जी नाराज हुए थे, क्योंकि सुमति मोरार जी उसी परंपरा में। तो वैसे तो गलती, अगर महान भक्त ब्रह्मा जी ने भी गलती की, लेकिन हम उनको गुरु मानते हैं, तो हम तो ऐसा मानना चाहिए कि भगवान की लीला थी, उनको स्थिति में डाला जिससे हमें सीखने को मिले। जनरली दो तरीके, एक तो वैष्णव के संग में रहोगे तो अपने आप पता चल जाता है वैष्णव के संग में रहने से, क्योंकि वैष्णव जो हमारे मित्र होते हैं, असली मित्र कौन है, जैसे मान लो मुझे कोई बॉयल्स आ गए तो असली मित्र बोलेगा प्रभु जी देखो आपके माथे पे बॉयल्स आ गए थे, मैं अपने माथे को तो देख नहीं सकता, खाली मिरर में देख सकता हूँ, और कभी नहीं भी देखा होगा, या पीछे बॉयल हो गए, पीछे तो मिरर में भी नहीं देख सकते आप, तो असली मित्र कौन है जो बॉयल आने पर बोले वो बॉयल है, कोई बोलने की जरूरत नहीं, बढ़ने दो बढ़ने दो, या दूसरा मित्र बोलेगा देखो प्रभु जी आपको बॉयल आ रहा है। ऐसे भक्तों के संग में रहने से ये दुर्गुण अपने आप निकल जाते हैं, और साथ साथ अपने आप को एनालाइज करना भी बहुत अच्छा है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ऑलवेज, उसके हफ्ते में एक दिन या दस दिन में एक दिन बैठ के अपने आपके जीवन को स्टडी करना कि मैं कैसे आगे बढ़ रहा हूँ। अल्टीमेटली कृष्ण हृदय में, कृष्ण हेल्प कर, समय हो रहा है, बस एक लास्ट क्वेश्चन। यस, दास दास अनुदास, मन में तो सभी के दास दासानुदास होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में संसारी लोगों का व्यवहार में, हम मन में दास होना चाहिए लेकिन व्यवहार थोड़ा अलग हो सकता है। जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं और कोई धोखा दे रहा है आपको बिजनेस में, और आप बोलेंगे प्रभु जी मैं तो आपका दास हूँ, लीजिए, तो आपकी दिवाला निकल जाएगा। कोई चीटिंग कर रहा है तो आपको बताना होता है चीटिंग। और नम्रता का मतलब ये नहीं है, मान लो आप कपड़े की दुकान है, आप एडवर्टाइज करते हैं हमारे कपड़े सबसे खराब हैं, सबसे नीच है, लोएस्ट कैटेगरी है, त्रिनादपी तो नीच है, तो फिर कोई खरीदी नहीं करेगा। मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, व्यवहार में अलग करना, लेकिन मन में जाना चाहिए दास। जैसे आप परिवार से भी, आपके बेटा है, आपके बेटा गलती कर रहा है, बोलोगे प्रभु जी ये भी कृष्ण का भक्त है, मैं आपका दास हूँ, आप स्कूल नहीं जा रहे कोई बात नहीं, घर में रहो, मैं आपको थप्पड़ मारना पड़ेगा, जाओ बेटे जाओ स्कूल में जाओ। तो गुरु भी शिष्य के सेवक हैं, गुरु कई बार शिष्य को डांटते हैं, करेक्ट करते हैं, वो भी शिष्य के अच्छाई के लिए होता है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे, एक्चुअली एक लेटर में रिसेंटली मेरे पास एक मोबाइल में एक एप्लीकेशन आया, शायद आपके पास भी होगा, गीता बेस्ड है ना, तो उसमें सारे प्रभुपाद जी के लेटर थे। तो प्रभुपाद एक डिवोटी को लेटर में लिख रहे हैं कि वास्तव में देखने जाए तो सब जीवों में भगवान है, इसीलिए मैं सबका दास हूँ, हालांकि मैं गुरु की पदवी पे हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप सबका भी दास हूँ, आई एम अ सर्वेंट, आप सब मेरे गुरु महाराज के प्रतिनिधि हो, इसलिए मैं आपका सेवक हूँ। ऐसा प्रभुपाद जी सोचते थे मन। और ऊपर से कहते प्रभुपाद जी इतने गुस्से होते थे जब वृंदावन टेम्पल बनाना था और मेहनत काम नहीं हो रहा था तो प्रभुपाद जी इतने गुस्से होते थे। कई बार तो भक्तों को प्रभुपाद के पास में आने से डर लगता था। जब मैं भी जब प्रभुपाद जी से मिला 1977 में, तो प्रभुपाद जब जूहू में आए तो प्रभुपाद जी के कमरे तैयार नहीं थे पांचवें माले पे। तो प्रभुपाद इतने गुस्से हो गए। प्रभुपाद जब भी प्रभुपाद जी का कार वो जानबूझ के ड्राइवर को बोला गया कि यहाँ पे मत रोको, पुराने क्वार्टर्स में ले जाओ। तो प्रभुपाद को पुराने क्वार्टर्स में ले गए। तो प्रभुपाद जी बोले नहीं वापस चलो, मुझे वही कमरों में रहने। बोले नहीं बने, मैं यहीं रहूंगा, मेरे सामने शिफ्ट हो गए और हथौड़े का काम चल रहा है वहीं रहे। तो जब काम शुरू हो गया तो रात को फिर कहीं और चले गए रहने के लिए। जब प्रभुपाद एक बार भक्तों को बोले कि मैं चाहता हूं एक राधा माधव कीर्तन मंडली आई है बंबई में, वो बहुत अच्छा कीर्तन किया उन्होंने जुहू मंदिर में। तो प्रभुपाद गिरिराज महाराज से बुलाए, बोले मेरी इच्छा है कि सारे कीर्तन मंडली को यहीं पर रहने की व्यवस्था करो, उनको कमरा दो प्रसाद दो तीन बार। गिरिराज महाराज बोले हमारे पास रहने की जगह नहीं है, हम क्या करें। तो प्रभुपाद जी बोले फिर ठीक है फिर आप कीर्तन करो। बोले हमारे पास टाइम नहीं है। प्रभुपाद जी बोले 24 घंटे कीर्तन। बोले प्रभुपाद इतना तो नहीं हो सकता। फिर करते करते निश्चय हुआ कि हफ्ते में 2 घंटे करना है कीर्तन। प्रभुपाद जी बोले मेरी यही इच्छा थी कि हफ्ते में 2 घंटे हो, लेकिन पहले बोलता तो मानते नहीं थे। ये मेरा ट्रिक था, धीरे धीरे लेके समय हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम की जय। Thank you.